أحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے نئی سورہ، سورۃ المائدہ. سورۃ المائدہ بہت امپورٹنٹ سورت ہے اس حوالے سے کہ اس میں بہت سارے شرعی احکامات ہیں، حلال و حرام کا ہمیں بتایا گیا ہے. اس سورت کا نام المائدہ یعنی دسترخوان، کھانے کا خوان، جس پہ کھانے چنے جاتے ہیں اس چیز کو مائدہ کہتے ہیں. اب اس کو آپ دسترخوان کہہ لیں، چادر کہہ لیں، چٹائی کہہ لیں، جس پہ بھی آپ کھانے چنتے ہیں. نام جو ہوتا ہے وہ صرف ٹائٹل ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا ٹاپک یہی ہو، کہ پوری صورت میں یہی ٹاپک چل رہا ہو. مگر ایک طرح سے اس کو اس طرح آپ اس کے ساتھ مطابقت کر سکتے ہیں کہ اس میں چونکہ بہت سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، بہت سارے احکامات ہیں، چاہے کھانے سے متعلق بھی ہیں، آپ کے دسترخوان پہ کیا کیا ہونا چاہیے اور کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے وہ بھی آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو چاہے اس سے متعلق ہو یا یہ ہو کہ بہت سارے احکامات ہیں جو چن دیے گئے، جیسے بہت سارے کھانے رکھ دیے جاتے دسترخوان پہ، تو اسی طرح بہت سارے احکامات آپ کے سامنے اس صورت میں آئیں گے. مائدہ اس کا جو نام لیا گیا وہ اس کی آیت نمبر 112 میں بھی، 114 میں بھی ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے لیے دعا کی تھی. یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورت کون سی ہوتی ہے؟ ضروری نہیں کہ مدینہ میں ہی نازل ہو. مدنی صورت کا مطلب ہوتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں. تو یہ اس کی بعض آیتیں صلح حدیبیہ سے واپسی کے اوپر نازل ہوئیں، یعنی مکہ میں ہی نازل ہوئیں. اس صورت کی بعض آیتیں یہ سمجھ لیں کہ حجت الوداع کے موقع پہ نازل ہوئیں، یعنی بالکل اینڈ کی طرف کی یہ صورت ہے. اور اس میں وہ احکامات ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائنل احکامات ہیں، ان میں سے کوئی حکم بھی منسوخ نہیں ہوا، ایبروگیٹ نہیں ہوا، کیونکہ باقی جگہوں پہ آپ کچھ باتیں دیکھتے ہیں نا کہ یہ چیز منسوخ ہو گئی، یہ حکم منسوخ ہو گیا، یا گریجولی حکم آتے ہیں، جیسے کہ شراب کا حکم پہلے یہ کہا گیا، پھر یہ کہا گیا، پھر اس کو حتمی طور پہ فائنلی اس کو حرام کیا گیا، تو گریجولی حکم دیے گئے. مگر اس صورت میں جو بھی احکامات ہیں وہ بالکل فائنل ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر آن ٹاپ آف دیم کوئی بات نہیں کی گئی. کوئی شریعت آہستہ آہستہ اتری تھی نا، تو پچھلی صورتوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کوئی ایسی چیزیں آتی تھیں، لیکن یہاں پہ آپ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے. اس صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو مردوں کو سکھایا جانا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سارے حلال و حرام کے احکامات ہیں، اور عورتوں کو سورہ نور سکھانی چاہیے کیونکہ اس میں عورتوں سے متعلق احکامات ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں کہ یہ مردوں کی صورت ہے اور عورتیں نہیں اس کو سیکھیں، عورتیں بھی اس کو سیکھیں، کیونکہ حلال و حرام کے احکامات سبھی کو معلوم ہونے چاہیے اور عورتوں کے ذریعے مردوں تک بھی پہنچ جائیں گے. حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں حج کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو حضرت عائشہ نے پوچھا، اے جبیر، کیا تم المائدہ کی تلاوت کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آخری صورت نازل ہوئی ہے، اس میں جو حلال ہے تم اس کو حلال سمجھو، اور اس میں جو حرام ہے تم اس کو حرام سمجھو. اس بنا پر یہ صورت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ فائنل سمجھ لیں احکامات ہیں، یہ سمجھ لیں آخری صورت ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ ڈن ہیں، और आपको पता है जो आखिर आखिर में बात की जाती है, चाहे पहले भी बात की गई हो, लेकिन एक तरह से उसको फिर दोबारा भी रीइन्फोर्स किया जाता है कई चीजों को जिनको के इम्पोर्टेंस देनी होती है। तो आप उस लिहाज से भी देखेंगे कि कुछ चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर वो दोबारा इस सूरत में भी आप देखेंगे। इस सूरत को जैसे माईदा, मैंने कहा इसका नाम है, तो ईसाई भी माईदा का जिक्र करते हैं, वो फाइनल फीस्ट कहते हैं उसको। कुरान ऐसा नहीं कहता कि ये कोई फाइनल फीस्ट था, मगर ईसाइयों में इसी को फाइनल फीस्ट कहा जाता है। अच्छा, इसमें आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे जो मजामीन है इसके, उनमें आप हराम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आज भी इंशाल्लाह हम उन चीजों को देखेंगे जिनका खाना हराम है, अहदों के बारे में इस्लाम क्या कहता है, अहले किताब के खाने के बारे में, उनकी औरतों से निकाह के बारे में। इसी तरह इस सूरत में आप वुजू की फर्जियत और तयम्मुम के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिर यहूद नसारा का भी जिक्र आप इस सूरा में देखेंगे, और किस तरह से उनके जरिए हमें नसीहत क्या की गई वो भी इंशाल्लाह ताला आगे जाके हम देखेंगे। फिर हाबील और काबील का जो किस्सा है वो भी इस सूरत में आपको मिलेगा। फिर इसी तरह जब आप एक सोसाइटी में रहते हैं जहां पे यहूदी भी हैं, तो उनके साथ दोस्ती करने के क्या रूल्स हैं, क्या उनसे दोस्ती की जा सकती है या नहीं की जा सकती, काफरों के साथ दोस्तियां करने के बारे में क्या है। इसी तरह जो क्रिश्चियंस का अकीदा है ट्रिनिटी का, उसके बारे में, और ईसा अलैह सलाम को अल्लाह ताला जो उनसे कन्वर्सेशन करेंगे कयामत के दिन, वो भी इस सूरत में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे। तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, बाज़ सूरतें होती हैं ना जिनको आप पढ़ते हैं तो वो उनमें नसीहत का पहलू होता है, आखरत की याद होती है, बहुत इस तरह की चीज़ें काफ़ी आपको नसीहत वाली मिलती हैं, तो एज अ लेक्चर आप उनको सुन लेते हैं, ठीक है। लेकिन सूरह मायदा जो है ना, ये ज़्यादा एकेडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़नी है। इट्स नॉट जस्ट कि नसीहत बड़ा भरा एक लेक्चर है, बल्कि इसको ऐसे समझें कि आपको कुछ बातें सिखाई जा रही हैं और उनको आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना है। डूज एंड डोंट्स बहुत सारे हैं इसमें, सही है। तो इस लिहाज से इस सूरत को आप देखिए। इंशाअल्लाह ताला आज हम देखेंगे आयत नंबर 1 से 5 तक। आप सोचेंगे बहुत थोड़ी सी आयतें हैं, लेकिन मदनी सूरतों का स्टाइल कुछ ऐसा होता है कि उसकी आयतें कुछ लंबी होती हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक रुकू पे मुश्तमिल हैं ये आयात, और काफ़ी चूंकि इनके अंदर बातें हैं सीखने की, चूंकि हमारी ज़िंदगी से मुतल्लिक हैं, डेली लाइफ से मुतल्लिक हैं, तो जब तक हम इनको सही समझेंगे नहीं, इनको अप्लाई करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो इस लिहाज से इंशाअल्लाह ताला हम डेप्थ में जाएंगे इसकी। तो देखते हैं सूरतुल हलाल वल हराम, और ये सूरत हमें आज क्या सिखा रही है। पहले तो हम ये नियत करें कि जो ये सूरत हमें सिखाएगी, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए उन चीज़ों के ऊपर अमल करना आसान फरमा दे और हमें तौफीक दे कि हम इनको जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है उसी तरह हम इनको पूरा कर सकें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू से सूरत शुरू होती है। अब ये जो कलमा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू का, ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब भी कहा जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा जाए, तो समझ जाओ कि अल्लाह ताला तुमसे बात कर रहा है, आपको स्पेसिफिकली अल्लाह ताला पुकार रहा है। समझ लो अल्लाह ताला ने आपको पुकारा है आपके नाम से, जैसे आपका जो भी नाम है, समझ लें आपके नाम से आपको किसने पुकारा है, अल्लाह ताला ने खुद पुकारा है। यानी जैसे आप समझ लें कि मिसाल के तौर पे आप डॉक्टर ऑफिस में बैठे होते हैं, तो नर्स आके नाम लेती है, जो ही आपका नाम आता है आप फौरन खड़े हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि आप क्या बुलाने लगी है, मुझे क्या कहना चाहती है। अल्लाह ताला निदा दे रहा है ईमान वालों को, और हर ईमान वाले को हर जमाने के, हर जेनरेशन के, हर एज के। अब आप ये सोचें, मैं तो इतनी अच्छी ईमान वाली नहीं हूं, मेरे अंदर तो बड़ी कमियां। चाहे आप कैसे भी ईमान के इतबार से हैं, मगर आपके लिए भी ये हुक्म है। और ये तमाम वो लोग जिन्होंने दायरा इस्लाम में कलमा पढ़ के जो दाखिल हो चुके हैं, उन सब के लिए ये अहकाम है। ठीक है, तो इसलिए ये समझ जाएं कि मुझे और आपको ये कहा जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, तो हमें कितना सीरियसली इस चीज को लेना चाहिए। अच्छा, ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू हुए ना, इससे तीन सूरतें शुरू हुई हैं। एक ये सूरह शुरू हुई है, एक सूरह हुजरात शुरू हुई है, और एक सूरह मुमतहिना शुरू हुई है। ठीक है, तो ये तीन सूरतें शुरू हुई हैं, और ये तकरीबन 89 टाइम्स कुरान पाक में आया है। 16 टाइम्स तो सूरह माईदा में ही आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आप सोच लें, इससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी दफा पुकारा गया ईमान वालों को। और जब भी ईमान वालों को ऐसे कह के पुकारा जाता है, कुछ हुक्म देना होता है, या किसी चीज से रोकना होता है, या कुछ करने को कहना होता है, यानी डूज या डोंट में से कोई चीज आ रही है, समझ लें आगे। ठीक है, अब 88 टाइम्स तो कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ही शुरू हुई है। एक सिर्फ आयत ऐसी है कि जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू बीच में आया, अब आप बताएंगे कि कौन सी आयत है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला ढूंढिएगा इसको। तो अल्लाह ताला हमें क्या फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद। औफू किससे है? वफा युवफी, यानी फुल, पूरा, कंप्लीट, कंप्लीटली वफा करो। किसको? उकूद, अकद से उकूद। और मैंने आपको बताया गिरा लगाना इसका माना होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स यानी। और जब भी गिरा लगाई जाती, दो चीजें होती हैं ना जिनमें गिरा लगाई जाती। कॉन्ट्रैक्ट में भी दो फरीक होते हैं, जब वो कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं तो ये उनके दरमियान एक मुआहिदा तय होता है दोनों की रजामंदी से। तो इनको फुलफिल करो, और पूरा पूरा फुलफिल करो। मैंने आपको बताया ना कि कंप्लीटली, फुली इसका माना है औफू का। ये नहीं हम कह सकते जी मैंने 90% तो पूरा किया ही है ना, नहीं, 100% करना जरूरी है पूरा। अब कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे मालिक के साथ है, हमारे रब के साथ है। और वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? हमने तो आज तक कोई साइन नहीं किए किसी किताब पे, किसी किसी इदारे में जाके कोई कोर्स नहीं लिया, तो हमने तो कुछ नहीं ऐसा साइन किया, तो फिर हमारा अल्लाह ताला के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? देखिए, कलमा जो है ना आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका अल्लाह ताला के साथ। ये ए अल्लाह, मैंने आपको इलाह मान लिया, इलाह मानने के बाद अब मैं वो तमाम काम करूंगी जिनका आप मुझे हुक्म देंगे। इलाह मान लेना एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लेना एक कॉन्ट्रैक्ट है कि उनकी तालीमात में मैं चलूंगी। अब इसके बाद कोई ये कहे कि मुझसे नहीं नमाज पढ़ी जाती, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। 5 वक्त पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, 2 दफा पढ़ लेती हूँ, 3 दफा पढ़ ले, रमजान के रोजे मेरे से बड़े मुश्किल होते हैं। तो ये तो आपने कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट किया, क्योंकि आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि आप अल्लाह को इलाह मानते हैं, यानी उसका हर हुक्म आप मानेंगे। तो अब उसने अगर हुक्म दे दिया 5 दफा नमाज पढ़ने का, तो आपको 5 ही दफा पढ़नी है। समझ आई बात? तो ये एक, देखिए सारे मुआहदे जो होते हैं वो रिटन नहीं होते, वर्बल मुआहदे भी होते हैं और साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। इस जो कलमा आप पढ़ते हैं ना, जो शहादत, जो आप गवाही देते हैं, ये साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट है आपका अल्लाह ताला के साथ। आ गई बात? ऐसे नहीं है कि बस कह के और उसके बाद पता ही नहीं है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, को पता ही नहीं कि कहा क्या था, कह के घूमते फिर रहे हैं। आपने तो अपनी आजादी दे के और गुलामी को चूज कर लिया कि मैं उस रब की गुलाम हूं, वो मेरा इलाह है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा खालिक है, वही इबादत के लायक है, मैं उसके आगे झुकी रहूंगी। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने कर लिए। समझ आई? तो ये एक आपने कलमा पढ़ के, इसके अलावा इससे पहले भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था आपने अल्लाह ताला के साथ? जी हाँ, एहदे अलस्त, एहदे अलस्त आप कर चुके हैं अल्लाह ताला के साथ, जिसमें अल्लाह ताला ने पूछा था अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो हमने सब ने एक जुबान होके कहा था हाँ अल्लाह आप हमारे रब है, और दुनिया में आके भूल गए। जिसको हम कहते हैं ना अपनी जुबान में, देखिए पहले वक्तों के अंदर कौन सा लोगों के पास ये कोई कॉन्ट्रैक्ट के पेपर होते थे, कोई ये चीजें कहाँ होती थी, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे, ऐसा कोई खास अंगूठे वर्गूठे लगाना भी कोई चीज नहीं होती थी, बस जुबान दे देते थे, कहते थे मैंने हमने जुबान दे दी है। तो वो जुबान देना क्या है? वो आप किसी के साथ एक मुआहिदा कर रहे हैं, आप किसी को जुबान देते हैं को, तो मतलब है कि आपने एक वादा उसके साथ कर लिया कि मैं इसको फुलफिल करूंगा। और पहले वक्त के लोग जुबान देने को बहुत बड़ी चीज समझा करते थे, आज तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स की भी कोई अहमियत नहीं। तो इसके अलावा अब आप देखें, एक तो ये अब आपका मुआहिदा हो गया अल्लाह ताला के साथ, तो इसको फुलफिल करना है आपने। जब आपने कह दिया ना, किसने कलमा नहीं पढ़ा हुआ उसके ऊपर नहीं है, अब हम जाके अपने उन हमसायों को जो क्रिश्चियन है उनको कहने लगे भाई तुम क्यों नहीं नमाज पढ़ते, भाई तुम क्यों नहीं ये जकात देते, ये चीज चीजें हराम है, तुम क्यों नहीं ऐसे। तो हम नहीं उनको कह सकते क्योंकि उन्होंने कोई मुआहिदा नहीं किया हुआ, ये सिर्फ मुआहिदा ईमान वालों तुमने किया है तो तुम इसको निभाओ। नंबर टू, दूसरा मुआहिदा इंसानों के साथ होते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें अवाम है, हुक्मरानों के साथ एक मुआहिदा, हुक्मरान है वो अवाम के साथ एक मुआहिदा करते हैं, अवाम आपस में करते हैं, कंपनियां एक दूसरे के साथ करती हैं, लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, उनके अंदर आप देखते हैं निकाह का भी मुआहिदा होता है, उसको भी अकदे निकाह कहते हैं, बिजनेसिस के आपके मुआहिदे होते हैं, फिर और कई तरह के मुआहिदे होते हैं। आप देखिए जिंदगी के अंदर ये चीजें चलती हैं ना, आपने कोई घर किराए पे दिया, उसका एक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सारी चीजें मुआहिदे हैं। अब ये भी चाहे आपने रिटर्न फॉर्म में किए हुए, चाहे आपका एक साइलेंट मुआहिदा है, मिसाल के तौर पे आप किसी स्कूल में अपने बच्चे का दाखला कराते हैं, आपने एक मुआहिदा किया कि मैं फीस अदा करूंगी, ये नहीं फीस के बाद भाग जाए, ये खामोश मुआहिदा है कि हाँ हम पे करेंगे। ठीक है, आप कोई आपके पास अपनी कोई चीज रखवाता है तो आप कहते हैं मैंने कोई रिटर्न तो नहीं मुआहिदा किया कि मैं उसकी चीज का ख्याल रखूंगी, नहीं उसने आपके पास चीज रखवाई है ना, तो एक साइलेंट उसकी आपके साथ एक कमिटमेंट है कि आप उसकी चीज का ख्याल करेंगे। समझ आ गई बात? तो ये जो कमिटमेंट्स हैं, इसी तरह ये छोटी छोटी हमारी ये बातें होती है ना, छोटी बातों से ही फिर बड़ी बातें भी होती हैं। मैं फलां टाइम पे आपके पास पहुंच जाऊंगी, मैं फलां टाइम पे आपसे मिलूंगी, मैं इस वक्त आपके साथ ये जो मामला है ये फलां वक्त में करूंगी। तो देखिए ये भी एक तरह से एक आपने जो जुबान दे दी है किसी को, या आपने किसी को कह दिया है, उसको पूरा करें अपनी बात को। बात समझ आ गई? अच्छा, तीसरा एक मुआहिदा इंसान अपने आप के साथ भी करता है, और वो किस सूरत में? जब ये हम नजर मानते हैं ना कि मैं मिसाल के तौर पे कहती हूँ कि अब से मैं जिसको कहती मन्नत मानती हूँ, हम ज्यादा वर्ड यूज मन्नत का करते हैं, मन्नत मानती हूँ कि मैं हर मंडे को रोजा रखा करूंगी, तो ये इंसान ने एक मुआहिदा कर लिया। इसी वजह से इनको तोड़ना जो होता है जब, तो वो ही जो कसम का कफारा है उसी तरह है। तो ये भी आप मुआहिदा करते हैं, ये तीसरी तरह का मुआहिदा। तो हर किस्म के जब मुआहिदे करें, अव्वल तो या तो सोच समझ के मन्नतें माना करें, जोश जज्बात में आके ना मान लिया करें, और अगर मान लिया तो फिर उसको पूरा किया कीजिए। तो औफू बिल उकूद, पहली चीज ही जो बताई गई वो आपने अपनी कमिटमेंट्स को निभाना है। अनलेस के इंसानी तौर पे इंसान से कोई ऐसी हो जाए तो फिर उसके डिफरेंट और तरीके हैं कि किस तरह फिर आप उसको हैंडल करेंगे, लेकिन एक ये चीज होती है ना कि आप तो एक मजाक ही बन गया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला माफ करे कि किसी के साथ, बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा भाई आप आए हमारी जो इदारे पे, तो मैंने कहा इंशाल्लाह, तो उन्होंने कहा नहीं इंशाल्लाह कह दिया तो इसका मतलब नहीं आपने आना, इंशाल्लाह का मतलब ये कि आना ही नहीं है। यानी ये हम लोगों का कितना मजाक बन चुका है कि एक इंशाल्लाह को भी हमने मजाक कर दिया कि नियत कुछ नहीं होती, बस इंशाल्लाह ऐसे ही कह देते हैं। तो हमारी जुबानों को एतबार नहीं रहे, जबकि मुनाफिकीन की ये निशानी है कि जब वादा करता है तो उसको तोड़ता है। अच्छा, अब आगे, अहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए। कौन? बहीमा चौपाए, यानी चार टांगों वाले जानवर। मगर चार टांगों वाले तो बहुत सारे जानवर हैं, कुत्ता भी चार टांगों वाला, बिल्ली भी चार टांगों वाली। तो आगे बता दिया गया सारे चार टांगों वाले नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? अल अनआम, वो जो चौपाए की किस्म के हैं। बहीमा है लेकिन कैटल, मवेशी, चौपाए नहीं, सॉरी, मवेशी की किस्म के। यानी अब जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि ये बकरी होगी, गाय वगैरह, ये सारे मवेशी की किस्म के जानवर हैं, ये तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं। अच्छा, तो ये हलाल कर दिए गए, मगर कुछ हैं इनमें से जिनको, जो हराम है जानवरों में से, जो हराम किए गए हैं जो चीजें, तो उनकी एक्सेप्शन इल्ला के बाद है। यानी वैसे तुम्हारे लिए सारे चौपाए जानवर हलाल हैं, मगर हाँ कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शन किसकी है? इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय जिनको आपके, आपको तिलावत करके आपको बताया जाएगा, जो तुम पे तिलावत किए जाएंगे। तुम पर तिलावत किए जाएंगे मतलब क्या? जिनकी अभी तिलावत की जाएगी, जो अभी कुरान के अंदर आएंगे या आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया सूरह बकरा में आ चुका है, 173 में आप पढ़ चुके हैं, सूरह नमल 115 में आप देख सकते हैं, यही लिस्ट जो अब आयत 3 में इंशाअल्लाह ताला इस सूरत में आप देखेंगे। तो इस सूरत में आयत 3 में, अलबकरा 173 में और अन्नमल 115 में, इन्हीं चीजों का, एक ही चीजों का जिक्र है, वो सारी हराम है। इसी तरह और युतला अलैकुम क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो बताई हमें चीजें कि ये हराम है, वो भी इनमें आती हैं। यानी इस वैसे तुम्हारे लिए हलाल कर दी अल्लाह ताला ने मवेशी, मगर कुछ चीजों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम किया है, जिनकी लिस्ट अभी आपको बताई जाएगी, ये समझ लें बात। अब हदीस में कौन से आते हैं? हर दरिंदा जो चीरता फाड़ता है, अब आपको कोई पूछे चीता शेर क्या ये खा सकते हैं? नहीं, वो दरिंदे की किस्म के हैं, भेड़िया इस किस्म के। इसी तरह जो जानवर जैसे परिंदों की किस्म के, जो अपने यानी अपने पंजों से शिकार करते हैं, वो भी हैं जिनको हराम कर दिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीजों के तो नाम लेके बता दिए, कुछ की कैटेगरीज बता दी, अब उनमें जो भी फॉल करते हैं वो सारे हराम हो गए। अब ये हमारे ना खाने पीने से मुतालिक चीजें, इसलिए इनको गौर से सुनना जरूरी है। गैर मुहल मुहल सईदी व अंतुम हुरम, और कौन सी एक्सेप्शनल चीजें? एक वो जो आपको पर तिलावत की जाएंगी, नंबर टू गैर मुहल सईदी, ना हलाल करने वाले हो शिकार को इस हाल में कि तुम एहराम में हो। यानी क्या मतलब? ना बनो शिकार करने वाले हालते एहराम में। ने जब कह दिया गया ना कि हिलत लकुम बहीमतुल अनाम, जब कह दिया गया हलाल कर दिए तुम्हारे लिए सारे बहीमतुल अनाम, तो अब ये भी कोई सोच सकता है कि भाई, क्योंकि उन लोगों को ना, आज तो आप नहीं करते, लेकिन उन लोगों की तो एक खाने पीने का जरिया, मुआश का जरिया ही शिकार था ना। वो दुकानों से जाके, कोई मीट शॉप्स तो होती नहीं थी जहां से ले आते थे, तो शिकार करके खाते थे गोश्त। तो एक महबूब मशगला भी था और एक सोर्स भी था खाने का गोश्त। तो अब ये ना समझना कि भाई हलाल कर दिए गए तो अब हालत हराम में भी शिकार करने चल पड़ो, वो स्टिल रिस्ट्रिक्शन मौजूद है कि आप हालत हराम में आप नहीं शिकार कर सकते। और ये तो आप सबको पता है कि हराम की हालत में इंसान के ऊपर, हराम हराम एक कपड़े का नाम नहीं है कि आपने जो आदमियों ने दो वाइट चादरें पहन ली और औरतों ने खास ही किस्म का कोई अबाया सिलवा लिया, ये एहराम है मेरा। एहराम औरतों के लिए तो कोई खास कपड़ा एहराम नहीं होता, जो भी उन्होंने लिबास पहना हुआ है वही उनका एहराम है। मगर बात यह है कि हम समझते हैं कि वो कपड़े जो है ना, उनको एहराम कहते हैं। हालांकि एहराम एक हालत है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लग जाती हैं, यानी कुछ चीजें आपके ऊपर हराम हो जाती हैं, जिनमें से एक क्या है? शिकार करना। ठीक है, तो उस हालत में शिकार करना हराम हो गया। और इसका मतलब ये भी है, दूसरा मतलब, कि वह अंतुम हुरुम, और जबकि हो तुम हरम में। आपको पता है हरम की एक हदूद है, और उस हदूद के अंदर भी बहुत सारी चीजें हराम हो जाती हैं। वो जहां पे और चीजें हराम है वहां पे एक शिकार करना भी हराम है, यानी आप शिकार नहीं कर सकते हुदूदे हरम में। अब हुदूदे हरम कहाँ है? एक तो है काबा, एक है मस्जिद हराम। मस्जिद हराम वो मस्जिद है, वो जो उसकी बाउंड्री आपने देखी है, वो पूरी मस्जिद को मस्जिद हराम कहते हैं, आगे उसका जिक्र भी आ रहा है। तीसरा उससे भी बड़ा दायरा है हरम का, और इसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको हरम करार दिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह के हुक्म से। और उससे भी बड़ा दायरा जहां पे मीकात शुरू होती है, तो मीकात से हरम नहीं शुरू होता जहां से आप एहराम बांधते हैं, फिर उसके बाद आप अंदर जाते हैं यानी काफी आगे जाके फिर हरम शुरू होता है। आपने साइंस भी आजकल देखे होंगे, वहां पे लिखा होता है कि हदूद हरम यहाँ से शुरू हो रही है। तो जब तुम हरम में हो तब भी तुम शिकार नहीं कर सकते, यानी अब तुम ये ना समझना कि हलाल हो गए तो अब कहीं पे भी हलाल शुरू शिकार शुरू कर दो, पकड़ने शुरू कर दो ऐसे जानवरों को। इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला जो चाहता है फैसला करता है, यानी अल्लाह ताला की मर्जी है वो जिस चीज को चाहे हलाल करार दे, जिस चीज को चाहे हराम करार दे। कोई इस पे खड़ा होके ये नहीं कह सकता कि ये क्यों, इसलिए क्योंकि आगे अभी हलाल हराम की अहकामात आएंगे, वो बहुत सारे लोग क्वेश्चन शुरू कर देंगे, ये क्यों हराम है, ये क्यों हलाल है, फिर फलां चीज क्यों हराम, इसके पीछे क्या बात है। ठीक है, आप ये सवाल कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि इसके पीछे क्या हिकमत है, मगर एक बात हमेशा याद रखें, वो हिकमत वजह नहीं होनी चाहिए आपके रुकने की। अगर कोई चीज हराम है और आप कहते हैं मुझे हिकमत बताओ, हो सकता है कोई एक रीजन भी किसी के पास ना, किसी को कोई एक हिकमत भी ना बताओ। आज तो चलो साइंस है, आपको काफी चीजें मिल जाती हैं, वो जी इसका क्या ये नुकसान है, नहीं जी आज ये आपकी जिस्म के लिए ऐसे हैं, और लोग इसको बड़ा प्रमोट करते हैं, देखा नहीं, देखा जी हमारा इस्लाम भी ये कहता है, और देखो आज साइंस ने भी ये कह दिया है, और ये चीज कितनी मुजरे सेहत है, और पोर्क में देखो ये खराबियां हैं। कोई भी खराबी ना हो अगर पोर्क में, कुछ भी ना हो, वो बड़ा अच्छा है। अव्वल तो ऐसे कोई शरीयत ने अहकाम दिए नहीं है, याद रखें, कि जिसमें हमारे लिए कोई खैर है तो शरीयत ने उससे मना कर दिया, हमेशा वो वाले अहकाम दिए हैं जिसमें हमारे लिए कोई नुकसान है तो उससे मना किया गया। मगर ईमान वालों का, आज ईमान का हाल ये है कि वो पहले रीजन पूछते हैं कि बताएं हराम क्यों है, तब हम मानेंगे, ये नहीं होना चाहिए हमारे मानने की बेस। ठीक है, हमारे मानने की बेस क्या होनी चाहिए? अल्लाह ने हुक्म दे दिया, समय ना हो आता ना, यहकुमु मा युरीद, अल्लाह ने पैदा किया, उसकी तखलीक है, इंसान भी और ये सारे जानवर भी, वो चाहे इनको हलाल करे, वो चाहे इनको हराम करे, जिसको चाहे हलाल कर दे, जिसको चाहे हराम कर दे। समझ आई बात? हिकमत पता चल गई है, कोई हरज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, कोई मसला नहीं। मगर हिकमतों के पीछे ऐसे भागने की जरूरत नहीं है कि मुसलमान पागल हुए पड़े कि हम कोई रीजन ढूंढे ताकि हम दूसरों को भी बताएं, देखा देखा हमारा तो कुरान ये कहता है, देखा, चलो आप दूसरे को कन्विंस करने के लिए, बात करने के लिए एक पॉइंट ला सकते हैं, लेकिन याद रखें आपके दिल में कभी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये तो पता नहीं हमारे लिए कोई अच्छी चीज थी और क्यों हमारे लिए हराम हो गई। और ये सिर्फ खाने पीने में नहीं, हर चीज में याद रखें, इस असूल को याद रखें। अगर आपको अल्लाह ताला पर्दे का हुक्म देता है, अगर आपको अल्लाह ताला हलाल और हराम कमाई में से किसी चीज की कमाई को फरमा दिया कि ये हराम है, ये हाल हुलिया हराम है, ये ताल्लुकात हराम है, तो डोंट फाइंड रीजंस, इसकी जस्टिफिकेशन ना मांगे, इसकी हिकमतें ना पूछें, क्या आपके लिए इतना काफी नहीं है कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया, और मेरे रब ने हुक्म दे दिया, मेरे मालिक ने फरमा दिया, तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि नहीं मैंने नहीं करना, मुझे पता चले या ना चले, हो सकता है हमारी अकल ही इतनी हो, या आज साइंस ने उन चीजों को एक्सप्लोर ही ना किया, क्या हम साइंस का इंतजार करते रहेंगे? इतने जमाने तक लोगों ने, जिन्होंने इस्लाम के ऊपर चल के दिखाया, उनके पास कोई साइंटिफिक फैक्ट्स नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने माना ना। आज हम क्यों ढूंढते हैं साइंस को मानने के लिए, क्यों हम इसको रीजन बनाते हैं? इसलिए कि हमारा ईमान कमजोर है। क्या हमारे ये ईमान नहीं है कि अल्लाह ताला के पास राइट है
कि वो जिस चीज को मर्जी चाहे शरीयत में हलाल और हराम करे। अगर आपने रीजंस की बेस पे ही मानना है तो वो तो बहन कोई भी मान लेगा, कोई भी मान लेगा। अब शराब के हुर्मत के रीजंस आपको अगर 10,000 बता दिए गए, ड्रग्स के 10,000 बता दिए गए, भाई ये रीजन है, इसकी वजह से ये हमारे लिए इतनी खराब चीज है, तो वो तो वो कोई गैर मुस्लिम को भी बताते हैं तो वो भी मान लेता है। तो आपका क्या कमाल हुआ, आप तो ईमान वाले हैं। ईमान का मतलब ही ये है, गैब पे ईमान। क्या पढ़ा था, सूरह बकरा शुरू ही हुई थी, कुरान को शुरू ही किया था, तो क्या पढ़ा था, गैब पे ईमान। मुझे पता है या नहीं है, ये चीजें मेरे से अगर गैब है, ये आज पता ही नहीं चली, इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो फिर भी मैं मानती हूं क्योंकि मैं ईमान वाली हूं और मुझे वो हर चीज माननी है जो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दे दिए। ओबीडियंस का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह के साथ है कलमा पढ़ने के बाद, अब इसके बाद चू चरा कहाँ की, नहीं ऐसे नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, नहीं क्या करें, नहीं ये वो, कितनी तरह की हमने चीजें बातें बनाई हैं। आपने तो ओबीडियंस का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, कमिट किया हुआ अल्लाह ताला के साथ। तो अब हमने क्यों मानने अल्लाह के हुक्म, सूरा शुरू हो रही है, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स आएंगे, तो क्यों मानने हैं बताएं। ये असल में हमारे लिए बहुत सेहत के लिए अच्छा है, ये असल में आजकल इसका ट्रेंड बहुत है, ये असल में हेल्दी बहुत है, ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है ना, ये पल्ले बांध लेनी है बात। और दूसरा, हमें इस आयत से क्या पता चला कि बाज दफा हमारे यहाँ ये बहुत, आज खास तौर पे वो जो वेजिटेरियंस हैं वो बहुत इस चीज का प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी देखो ये बड़ा जुल्म है, जानवरों को आप कुर्बान करते हैं, किसी की जान ले लेना सिर्फ खाने के लिए, ये तो सही नहीं है, तो वीगन हो जाएं, बस वेजिटेबल्स खाया करें, जानवर खाना ही नहीं चाहिए। तो जिस चीज को अल्लाह चाहे हलाल करे, और यहाँ पर इस आयत से हमें पता चल गया कि अल्लाह ताला ने इन जानवरों को हलाल किया है, ये कोई जुल्म नहीं है कि अगर आप इनको खा रहे हैं तो इसके अंदर कोई गिल्टी होने की जरूरत नहीं है कि हम कोई बुरा काम कर रहे हैं, कोई ज्यादती का काम कर रहे हैं। इसीलिए तो हम इसके ऊपर अल्लाह का नाम लेकर इनको ज़िबा करते हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि किसी की जान लेना हमारे लिए जायज़ नहीं है, लेकिन जब हम अल्लाह ताला का नाम लेके उसको ज़िबा कर रहे होते हैं तो मतलब क्या होता है कि हम अब इसके अंदर अल्लाह ताला को याद करके कि उसकी इजाज़त से, उसकी परमिशन से मैं इस जानवर की जान ले रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इजाज़त दी है उसी के नाम पर, जिसकी ये मखलूक है, जिसने पैदा किया है इसको और मुझे भी। तो मैं वही बात, अच्छा अब आते हैं, देखते हैं, अब वो जो आ गया ना इल्ला मा युतला अलैकुम, चले अब उसकी लिस्ट आने लगी है, अब उसका पता चलेगा हमें कि इल्ला मा युतला अलैकुम क्या है, सिवाय उसके जो के आपके ऊपर पढ़ दिए जाएंगे। या अय्युहल्लदीना आमनु, अब देखें दोबारा आया है ईमान वालों, कौन कौन है ईमान वाला, सब सुन रहे हैं ना ईमान वाले, एकदम अलर्ट हो जाएं। अब कुछ मुझे बताया जा रहा है, सम डूज और सम डोंट, करना है कुछ करने को कहा जाएगा या कुछ से मना करने के लिए कहा जाएगा। अब यहां पे क्या है, पिछली दफा में क्या आया था, डू औफु बिलउकूद, यहां पे क्या है, ला ला और आगे ता आ जाए, मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब है फेले नहीं है, यानी कुछ चीज से मना किया जा रहा है। ला तो हिल्लू, ना तुम हलाल करो, क्या ना हलाल करें, शायर अल्लाह, अल्लाह के शायर को, शायर शायरा की मैंने आपको बताया कि जमा है, शायरा कहते हैं निशानी को, साइन को, जिसको कहते हैं ना हम ट्रेडमार्क, जैसे कि हर समझ लें कि हर मुल्क का, हर कौम का कोई, उनका कोई निशान होता है, कोई सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल मुल्कों के झंडे होते हैं, उनके गाड़ियों की नंबर प्लेट्स होती हैं, उनका तराना होता है, और इस तरह की चीजें उनकी होती ना, उनकी कुछ बिल्डिंग्स होती हैं जो उनके खास सिंबल्स हैं। अब किसी ने जब देखा है आपने कि जब उन्होंने एहतजाज वगैरह करना होता है लोगों ने, तो वो उस मुल्क को इंसल्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके शायर में से कोई चीज लेके उसको जलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है ना,
यानी उसकी एक तरह से बेइज्जती कर रहे होते हैं। तो कुछ शख्सियात मसलन उनके कोई प्रेसिडेंट या उनकी कोई इमारतें, उनके कोई मॉन्यूमेंट्स, जैसे हमारे मुल्क के अंदर है मीनारे पाकिस्तान है मसलन, अब वो एक शाहिरा है, साइन है उस कंट्री का, ठीक है। तो इसी तरह जगह भी होती हैं, चीजें भी होती हैं। तो इस्लाम की भी कुछ शायर हैं, यानी जिनको शायर अल्लाह कहा गया, सिंबल्स हैं जिनको देख के इस्लाम की पहचान होती है, जिनको देख के इस्लाम याद आ जाता है, जिनको देख के अल्लाह याद आ जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि जैसे वो ऐसी चीजें हैं कि अगर वो सामने आए तो पता चलता है कि ये अल्लाह पर ईमान का इजहार कर रही है, ये चीज है ना, अल्लाह की इसको निशानी समझ लें। तो ये मैंने आपको जैसे बताया, जगह भी हो सकती हैं, ये कुछ आमाल भी हो सकते हैं, और कुछ चीजों का जिक्र आपको आगे पता चल रहा है। नंबर 1 शाहरुल हराम, हदी कलाइद, नंबर 4 आमीन अल बैत अल हराम, ये चार चीजों का तो यहाँ पे पता चल गया। इसके अलावा भी बहुत से शायर अल्लाह, मसलन है काबा, काबे का एहतराम है। ला तहलु का मतलब क्या, ना तुम हलाल करो, मतलब क्या, यानी इसकी बेहुर्मती को अपने लिए हलाल ना समझो, इसको इसकी हुर्मत है, इसकी ताजीम है, इसकी इज्जत करो शायर अल्लाह की, ठीक है, इनको रिस्पेक्ट दो क्योंकि ये अल्लाह की शायर है, अल्लाह ताला याद आ जाता है। आप देखें, आप सफा मरवा देखते हैं, आप टीवी पे ही काबा देखते हैं, मस्जिद नबवी देखते हैं, आपको क्या याद आता है, आप मकामे इब्राहिम देखते हैं, आप कहीं पे भी मस्जिद देखते हैं, आप किसी को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं, रमजान आता है, क्या याद आता है आपको, ये शायर अल्लाह है, इनकी रिस्पेक्ट है। कुछ टाइमिंग्स ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं, ये सारे शायर अल्लाह है। कुरान को देख के क्या आता है याद, अल्लाह याद आता है, इसकी ताजीम है। तो जस्ट बिकॉज कोई चीज शायर अल्लाह है तो उसकी ताजीम हमारे पर जरूरी है, अगर आप ईमान वाले हो तो आपके पर जरूरी है, ये सिंबल है अल्लाह के, समझ आई। अब हम देखते हैं कि हमारा शायर अल्लाह के साथ क्या रवैया होता है। हम शायर अल्लाह को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी शादी के मौके पे देखें, एक आदमी उठ के अजान देने लगता है तो लोग क्या करते हैं, इस मुल्ला को देखो, हंसने लग जाते हैं। किसी को हिजाब में देखते हैं तो कहते हैं, तुम कब से मुल्लानी बन गई हो, ये क्या है। आप लोग मजाक में कहते हैं मुसल्ली मुसल्ली, उसको ना एक डिग्रेडिंग वो समझा जाता है, मुसल्ली यानी एक जैसे एक बहुत ही लो ग्रेड किसी को नाम देना, हालांकि आपको पता है मुसल्ली कौन होता है, ये जब सब कॉन्टिनेंट में हिंदू मुसलमानों को कहते थे मुसल्ली, मतलब नमाजी, तो आज ये एक गाली के तौर पे या एक बुरी बुरे उसके लकब के तौर पे किसी को कहा जाता है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, इस तरह की बातें करके क्या, किस चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है, शायर अल्लाह का, ये शायर अल्लाह का मजाक है। क्योंकि जब हमारी साइट में इन चीजों की अहमियत नहीं है ना, तो फिर हम मजाक उड़ाने लगते हैं, असल में इनकी रिस्पेक्ट अल्लाह की रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये किसका हुक्म है। अगर किसी ने हिजाब लिया हुआ है या किसी की दाढ़ी है, बाज लोग दाढ़ी को देख के बहुत हंसते हैं और उसको जोकर सा कहते हैं, बाज लोग टखनों से ऊपर किसी ने अगर अपनी शलवार की हो तो उसके ऊपर बड़ा मजाक उड़ाते हैं, तो ये किसके हुक्म है, उसने खुद तो नहीं किया, ये तो उसने अल्लाह की बात मानी है ना, इसके ऊपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी इन चीजों की, लेकिन आपने उन्हीं चीजों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई क्लीन शेव आता उसको तो नहीं हम मजाक करते, दाढ़ी का ही क्यों। एक मुल्क के वजीर आजम ने कहा था नकाब में औरतों को देख के कि ये तो डाकू लगती हैं, और दुनिया को अल्लाह ने नकाब में कर दिया, आप देखें नकाब के मजाक उड़ाने। तो ये छोटी बातें नहीं है।
इनको हम मामूली समझते हैं और जस्ट फन समझते हैं। आगे आएगा, आप कुरान में पढ़ेंगे क्या अल्लाह और उसका रसूल ही रह गया तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए। वो कहते हैं हम बस मजाक कर रहे थे, हम तो बस दिल लगी कर रहे थे। क्या अल्लाह और उसका रसूल ही रह गए दिल लगी करने के लिए, मजाक करने के लिए? तो ये बातें मजाक की नहीं होती। समूद की आपको कहानी पता होगी, क्यों हलाक हुए? फाखर उन्नाका, उन्होंने ऊंटनी की कूंचे काट दी थी। तो क्या ऊंटनी की कूंचे काटना इतनी बड़ी बात हो गई? क्या इतनी इंपॉर्टेंट थी वो ऊंटनी? हाँ, वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको क्या फरमाया, नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी, अल्लाह की ऊंटनी, यानी अल्लाह के शायर में से थी वो, अल्लाह की निशानी थी वो। इसलिए जब उसको काटा गया तो उस कौम के ऊपर अजाब आ गया। तो ये छोटी बात नहीं है, इस तरह मस्जिदों का एहतराम है, मस्जिदों की इज्जत करना। क्यों? ये शायर अल्लाह में से है, कोई आपको कुछ भी ना कहे, कहीं उन्होंने साइन ना लिख के लगाए हो कि जी आप बाथरूम को साफ करके निकलिएगा, आप टिश्यू ना फेंकिएगा, आप जरा तमीज से यहाँ पे रहिएगा, किसी ने भी ना लगाया हो, ना कोई कैमरे लगे हो, तब भी हमें क्यों ये करना है? इसलिए कि ये शायर अल्लाह है। समझ आई बात? तो जरा गिने शायर अल्लाह कौन कौन से हैं, और फिर जरा देखें कि हमारे दिलों में उनकी क्या इज्जत है। आपको पता है कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो शायर अल्लाह की ताजीम करता है तो ये दिल के तकवा की निशानी है। तब पता चलेगा आपके अंदर कितना तकवा है। लोगों के देखने पे, कैमरों के होने पे, किसी के कहने पे शायर अल्लाह की ताजीम करना, ये क्या ताजीम हुई? वहां तो ये है कि हमारे दिल में इन चीजों की इज्जत हो। कुछ लोग कुरान पाक को ही लेकर पैरों में रख देते हैं, जमीन पे पड़े होते हैं। क्यों? क्या आपको पता नहीं ये शायर अल्लाह में से है? तो ये बात छोटी बात नहीं है। और ये सूरत कौन सी है जो आखिर में उतरी है? हतमी, ये फाइनल ये अहकामात हैं। गौर से इन बातों को समझिएगा। अब आपने बनानी है एक लिस्ट शायर अल्लाह की, जितनी भी लंबी बना सकते हैं बनाइए, और फिर देखिए कि इनका एहतराम कैसे करना। कौन कौन सी चीजें शायर अल्लाह हो सकती है? मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे दी हैं, बाकी आप खुद बनाएं। और जिनका मजाक उड़ाया जाता है, और इससे बाज रहना है हमें। अब आगे मैंने आपको कहा कुछ शायर अल्लाह का अल्लाह ताला ने यहाँ पे बता दिया, वला शहर अल हराम, जैसे कि, और ना शहर हराम की तो तुम हलाल करो। यानी शहर अल हराम कौन से थे? जो हुरमत वाले महीने, हुरमत वाले महीने वो होते थे जिनमें अरब लोग इस कदर एहतमाम करते थे कि वो किसी को भी नुकसान नहीं देते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, जंगे नहीं करते थे, लूट मार नहीं करते थे। इन महीनों के अंदर इनको यानी बड़ी इज्जत देते थे वो, कत्लो गारत गिरी इसमें बंद हो जाती थी। इसी वजह से लोग इन महीनों के अंदर ट्रेवल करते थे, रजब में उमरे के लिए निकलते थे। जी कादा है वो, हज की तैयारी का महीना है, उसमें लोग जाहिर दूर दूर से आना होता था तो हज के लिए निकल पड़ते थे। जिलहज्जा में हज होता था, फिर मुहर्रम है उसमें वापस जा रहे होते थे। तो ये सारे, मुहर्रम को तो कहा भी गया ये अल्लाह का महीना है, तो ये सारे महीने हुरमत वाले हैं, इनकी भी इज्जत को खराब ना करो। यानी इनके अंदर कोई लड़ाई झगड़े फसाद वाली चीजें मत करो। अब जाहिर है अगर कोई जंग वगैरह है, अब तो इसके ऊपर पाबंदी नहीं है, इसकी पाबंदी उठ गई भी है, लेकिन गुनाह के कामों से परहेज करना चाहिए बाकी दिनों में भी, मगर खास तौर पे इन महीनों में, इसलिए कि इन महीनों की रिस्पेक्ट है। ठीक है, ये स्पेशल टाइम्स हैं, समझ ली। वलल हदिया, और ना हदी को हलाल करो, यानी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। हदी क्या है? कुर्बानी के जानवर जिनको असाइन किया गया हो कुर्बानी के लिए। अब उस जमाने के अंदर मक्का में कोई बहुत बड़ी जानवरों की सप्लाई नहीं होती थी कि लोग अपने जानवर वहां से खरीद लें, जैसे आज होता है, लोग अपने साथ जानवर लाते थे। ठीक है, तो उनको भी किसी तरह का भी तंग करना, किसी तरह की भी उनको तकलीफ पहुंचाना, ये नहीं, ये क्यों? इसलिए कि ये डेडिकेटेड हो गए अल्लाह के लिए। समझ आई बात? तो इनको यानी उस जानवर की भी, इवन बताया गया कि उसकी भी एक इज्जत है, उस जानवर का भी एक एहतराम है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये अल्लाह ताला की खातिर एक यानी ले जाया जा रहा है। वलल कलाइद, और ना ही पटे वालों को,
कलादे की जमा, और ये गले के अंदर ना वो निशानियां डाल देते थे, ऐसी निशानी कि मतलब आप देखें कि आज भी आप बाज दफा देखते हैं कुर्बानी के जानवरों के गलों के अंदर कुछ हार वार डाले होते हैं, कुछ जूती भी डाल देते हैं, उस जमाने में भी ऐसे होता था। तो वो किस चीज की निशानी होती थी कि ये जानवर कुर्बानी का जानवर है। तो उन पट्टों की भी हुरमत है, इसलिए कि उनसे पता चलता है ना कि ये कुर्बानी के जानवर है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको ऐसे मिसाल देती हूँ, जैसे मस्जिद की तो हुरमत है ही, लेकिन मस्जिद का पता कैसे चलता है? वो मीनारे से पता चलता है। तो उस मीनारे की भी इसलिए हुरमत है क्योंकि ये मस्जिद का एक साइन है जिससे पता चलता है ये मस्जिद है। तो ये हदी के जानवर तो हैं ही जिनकी हुरमत है, वो कलाइद जो हैं, जो गले में डाले हुए पटे हैं, पटे वालों की भी एक इज्जत है। यानी अब आप इन जानवरों को पहले से नहीं जिबा कर सकते, वो उनको हरम में ले जाना होगा, इनको तंग नहीं कर सकते, इनको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, इनको कोई लूट मार के लेके नहीं जा सकता। वला आमीन अल बैत अल हराम, और इरादा करने वालों को बैतुल हराम का, और वो कौन होते हैं जो इरादा करने वाले हैं बैतुल हराम का, यानी जो हज या उमरा करने वाले हैं, मुहरिम जो है एहराम की हालत में, यानी जो हाजी निकला है या उमरा करने वाला निकला है, वो भी क्या है, वो भी शायर अल्लाह में से करार दिया है अल्लाह ताला ने। क्योंकि जब आप किसी को एहराम में देखते हैं तो क्या होता है, आपको देखते ही एकदम इतना अच्छा सा लगता है, वो हज उमरा याद आ जाता है, और आपको बहुत, आप एक उस चीज में खो जाते हैं, है ना। तो वो एक निशानी किस चीज की है? अल्लाह की निशानी है, शायर अल्लाह में से है। यानी जिन चीजों को भी आपको देख के अल्लाह याद आ जाए, वो शायर अल्लाह है। तो ऐसे लोग भी उनमें शामिल हैं जो हज या उमरा करने के लिए निकलते हैं, उसका कसद करने वाले। आमीन का मतलब क्या? ये आमीन नहीं है जो आमीन आप सूरह फातिहा के बाद या दुआ के बाद कहते हैं, ये आमीन है, हमजा मीम मीम से, मतलब करना होता है इरादा करना। जैसे इमाम भी इसी से, लोग इमाम का इरादा करते हैं ना, इमाम की तरफ बढ़ते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे लोग जो बैतुल हराम का इरादा करें, उनको भी किसी तरह की भी तकलीफ देना, हज पे जाने वाले लोगों को, बाज दफा उनको पैकेज कुछ दिया है और कुछ और निकलता है, उनको तंग किया जाता है वहां पे, जो इंचार्ज जो उनको टूर वाले लेके गए होते हैं, वो बाज दफा को फ्रॉड करते हैं उनके साथ, या वहां पे उनको वो चीजें नहीं देते जो उनका वादा किया गया था, कई लोग उनकी जेबें काट लेते हैं हाजियों वगैरह की, यानी कई तरह की चीजें हैं ना, कोई उनको वहां पे झगड़े उनके साथ शुरू कर देते हैं। तो जो भी इस जगह का इरादा भी करें, उसकी भी एक हुरमत है। हुरमत का मतलब क्या? उसकी एक रिस्पेक्ट है, ऑनर है उसका, उसको मत छेड़ो। तो वो हकूमतें या लोग जो जिनके पास से ये, जिनका ये सारा काम है इस चीज को देखने का, हज या उमरे का, उनको इस चीज में बहुत एहतियात करनी चाहिए कि ये शायर अल्लाह में से, उनको तकलीफ ना हो किसी तरह, क्योंकि ये दुयूफुर रहमान है ना, रहमान के मेहमान होते हैं ये, तो रहमान के मेहमानों को तंग करना तो ये वैसे ही सही नहीं है। यबतगूना फजलन मिन रब्बिहिम व रिदवाना, वो चाहते हैं अल्लाह का फजल तलाश करने के लिए निकलते हैं, और उसकी रजा वो क्या चाहते हैं, उनकी नीयत क्या होती है, इसका मतलब यही नीयत होनी चाहिए, कोई और नहीं नीयत होनी चाहिए, कि अल्लाह का फजल मिले और उसकी रजामंदी मिले हमें। अल्लाह के फजल से मुराद बाज लोगों ने ये भी लिया है कि अगर कोई कारोबार करने के लिए, क्योंकि फजल क्या होता है, जायद चीज ना, एक्स्ट्रा, तो अगर कोई तिजारत के लिए भी साथ कर लेता है जब हज उमरे के लिए जाता है, तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है, वो चाहते हैं कि अल्लाह का फजल भी मिले और उसकी रजा भी मिले। मगर मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम तिजारत करें, हम पैसा बनाएं, हम इससे कुछ कमाई करें, बल्कि मकसद यही होना चाहिए कि अल्लाह के घर जाएं और उसके उसकी रजामंदी हमें हासिल हो। तो वो लोग, उन जिनका ये इरादा है, वो इस इरादे से निकले हैं, इनको भी मत तंग करो। और इसके तो आप स्टोरीज तो सुन ही सकते होंगे कि कितनी स्टोरीज इनकी होती हैं, कि किस तरह इनको तंग किया जाता है, कभी एयरपोर्ट्स पे, कभी किस तरह से। وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، और जब हलाल हो जाओ तुम तो शिकार करो। हलाल हो जाओ तुम मतलब क्या कि जब तुम एहराम की हालत से निकल जाओ, पहले पाबंदी बता दी गई ना आपको कि एहराम की हालत में हो तो फिर आप शिकार नहीं कर सकते। अब बता दिया गया कि जब आप हलाल हो जाओ, हलाल का मतलब क्या, एहराम से निकल आए, तब है आपको फस्तौदु अमर है, शिकार करो। तो क्या मतलब, हर एक बंदा जो एहराम से निकले उसको जरूरी है कि वो शिकार किए बगैर नहीं घर जा सकता? नहीं, बल्कि इसका मतलब क्या है कि यानी एक इजाजत दी गई है, अमर नहीं है, इजाजत है। अब ये हमने कैसे जानना कि ये इजाजत है, सीगा तो अमर का ही है, ये चेंज हम कैसे कर सकते हैं खुद ही? यानी अल्लाह का तो हुक्म है फस्तादू, शिकार करो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं हमने ये इजाजत है कि फिर उसके बाद कर सकते हो, हुक्म नहीं है, लाजिम नहीं है। कैसे पता चलेगा? देखिए यहीं पे तो फिर पता चलता है ना कि हदीस की जरूरत पड़ती है, कहाँ पे हुक्म का मतलब इजाजत है और कहाँ पे हुक्म का मतलब हुक्म ही है। तो इसलिए इसी वजह से ये कहा जाता है कि आप कुरान पाक का सिर्फ तर्जुमा पढ़ के उसको ये ना कहें कि हम बस कुरान हमने समझ लिया। इसलिए क्योंकि देखिए कुरान पाक में कई ऐसे मकामात आपको मिलेंगे, आगे भी सूरह जुमा में भी आएंगे और भी जगहों पे, जहां पे हुक्म का माना इजाजत का है, मगर हम खुद से नहीं बना सकते इन चीजों को जब तक कि हमें कोई इसकी दलील ना मिल जाए हदीस से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कैसे समझा और समझाया, और भी बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। तब देखें, अब आप देखते ही जाएंगे कि हलाल और हराम में भी, अब यहाँ पे तो एक छोटी सी लिस्ट आपको मिल गई, बहुत सारी चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई जब, तो हमें तब समझ आई कि अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने आपको चीर फाड़ करने वाले जानवर बताए, ये बताए, तो अब कितनी जगहों पे इंसान को हदीस की जरूरत है समझने के लिए कि इसका माना क्या है। ठीक है, तो खुद ही पढ़ पढ़ के कुरान पाक के तर्जमे समझ लेना कि मैं आलिमा बन गई हूँ या आलिम बन गया हूँ, ये दुरुस्त नहीं है जब तक कि आप किसी से सीखे नहीं। ना यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगी कि यहाँ पे तो सीधा लिखा हुआ है तुम हलाल हो जाओ तो फिर तुम शिकार कर लो। वला यजरिमन्नकुम, और हरगिज ना आमादा करे तुमको, शनआनु कौमिन, दुश्मनी किसी कौम की, सद्दूकुम अनिल मस्जिद हराम, कि उन्होंने रोका तुमको मस्जिद हराम से, अंतातदु के तुम ज्यादती करो। इसका कॉन्टेक्स क्या है? असल में बात यह है कि जब मक्का फतह हुआ था उससे 2 साल पहले की तो बात है, सुलह हुदैबिया हुई थी, और सुलह हुदैबिया में आप जानते हैं कि वो सुलह क्यों हुई थी, मुसलमान तो उमरे के लिए निकले थे और कैसे उनको रोक दिया गया और उमरे उमरा नहीं करने दिया गया। उस वक्त का मलाल मुसलमानों को बहुत ज्यादा था क्योंकि ये वो जगह थी जिसमें कोई किसी को नहीं रोकता था, वहां पे कोई परमिट्स नहीं चाहिए होते थे, कोई वीजे नहीं चाहिए होते थे उस जगह पे आने के लिए, दुनिया जहान से लोग आते थे, कभी किसी को मना नहीं किया जाता था, और अल्लाह के घर से कौन मना कर सकता है? लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुसलमानों को वहां एंटर नहीं होने दिया, और मुसलमानों को इस बात का रंज था, हमें तो छोड़ो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं एंटर होने दिया। तो अब ये जो दिल के अंदर एक रंज है, एक गुस्सा भी है, उस वक्त का अंदर था तो सही, अब क्या था कि हमें पता चलता है कि एक काफला मदीना के पास से गुजरता था। अब देखे ना हालात बदल गए हैं, आप ये समझ लें, एक वो वक्त था कि मुसलमानों को इजाजत लेनी पड़ रही थी काफरों से कि हमें जाने दो, और अब मक्का फतह हो चुका, अब मुसलमान इन पावर है, डोमिनेंट है, अब किसी ने जाना है तो इनसे इजाजत ले, ये जिसको चाहे रोक भी दें क्योंकि जिसकी हकूमत है उसके ऊपर है ना सारा। अब मुसलमानों के पास बहुत अच्छा चांस था कि अब वो भी रोकें, वो ही करें जैसा उन्होंने किया था। हाँ, तो इन्होंने भी तो हमारे साथ यही किया था ना। इस चीज को यहां रोका गया, और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, देखो ये ना हो कि किसी कौम की दुश्मनी किसी कौम की, किस कौम की, यानी इन काफरों की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे आमादा कर दे, प्रोवोक करे तुम्हें। अन सद्दू कुम अनिल मस्जिद हराम, कि उन्होंने रोका था तुमको मस्जिद हराम से, अंतातदू के तुम भी अब ज्यादती करो। यानी अब रिएक्शन में तुम भी अब इसमें के हम जो नाकाम वापस गए तो ये भी नाकाम वापस हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया यहाँ पे कि देखो तुम्हारे दिल के अंदर क्यों है ये बात, तुम्हें तो ये तुम्हारे दिल में होनी ही नहीं चाहिए, ये नहीं कहा गया। यहाँ ये भी नहीं कहा गया उन्होंने तो कोई ज्यादती की ही नहीं, उन्होंने रोका था तुम्हें, ये रोका था, ये उनकी ज्यादती थी और ये बड़ी बात थी, और दिल में ये ख्याल भी आता है कि हाँ फिर हमें भी फिर अब मेरी बारी है ना, तो अब मैं भी यही करती हूं। मगर देखें दिल में ख्याल आने पे इंसान का कंट्रोल नहीं है, रिएक्ट करने में कंट्रोल है। फीलिंग्स को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, इन्होंने हमारे साथ बुरा किया था मगर अब मैंने रिएक्ट कैसे करना, ये मेरे हाथ में है। याद आ जाती है जब किसी ने आपके साथ बुरा किया होता है तो कभी जब पलट के एक वक्त में आप फिर ऊपर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक घर में पहले सास ने बहू पर बड़ा जुल्म किया, उसके बाद एक दिन वो भी आता है कि बहू की बारी आ जाती है। अब सास बूढ़ी हो चुकी है, बहू जो है वो ताकतवर है, अब उसकी चलने का वक्त आ गया, उसके बच्चे बड़े हो गए, उसके हाथ मजबूत हो गए, तो अब वो क्या करती है, एक मिसाल दे रही हूं मसलन। इसी तरह और भी आप बेशुमार मिसालें देख लें। एक दिन आप किसी से कुछ मांगने गए तो उन्होंने आपको बड़ा बेइज्जत कर दिया, फिर कुछ अरसा गुजरा, दिन बदलते देर तो नहीं लगती, एक दिन ऐसा भी आया कि फिर आप पावर में आ गए और उन्हीं लोगों को आपसे कोई काम पड़ गया, अब फिर आप क्या करेंगे। अब वो लोग आपके दरवाजे पे आए या उनको उसी तरह बेइज्जत करेंगे जैसे उन्होंने आपको किया था। अब याद तो एकदम आती है ना, एकदम टीस सी उठती है कि हाय वो दिन याद है जब इसने मेरे साथ ये किया था। अब अंदर फीलिंग आई लेकिन रिएक्ट कैसे करना ये समझाया जा रहा है। ये ना हो कि तुम किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे आमादा करते कि इन्होंने भी तो हमारे साथ ये किया था, मैं भी इनके साथ ज्यादती करूं। अगर उन्होंने ज्यादती की थी तो तुमने नहीं करनी। देखें कितनी बड़ी तालीम है जो कुरान हमें दे रहा है, और ये हर मैदान में है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, किसी जगह पे भी कोई भी किसी को ईजा पहुंचाता है, तकलीफ देता है, तो अल्लाह दिन बदल देता है। तकलीफ देने वाले को समझना चाहिए और ये सोचना चाहिए हमेशा कि आज मेरे दिन है, कल को इसके दिन भी आ सकते हैं। आज मुझे लगता है ना ये हेल्पलेस है, कोई यतीम बच्चा है, कोई गरीब बच्ची है, कोई नौकर है आपका, कोई बेवा मिस्कीन लोग हैं, कोई गरीब रिश्तेदार हैं, उनको आज बेइज्जत कर रहे हो ना, कल को कोई पता नहीं है, वो आपसे ऊपर जाके किसी पोजीशन पे बैठ जाए और फिर आपको उनके पास जाना पड़े उस दिन, कोई पता नहीं होता। वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे से रोक दिया था, एक दिन काबे की कुंजी आपके हाथ में थी, काबे की चाबी आपके हाथ में थी, एक दिन उन्होंने इसी मक्का से आपको निकाला था, आज आप मक्का फतह करके इसके फातेह बन के एंटर हो रहे हैं, चाहते तो उनको वहां से निकाल देते। तो देखिए दिन बदल जाते हैं, आज किसी का जोर है कल किसी और का जोर है, एक जैसे नहीं रहते। हमेशा ये बात याद रखिएगा जिंदगी, किसी के साथ भी ज्यादती करने से पहले, इस घमंड में आने से पहले कि मैं बड़ी चीज हूं ना, सोच लेना कि हमेशा मैं बड़ी चीज नहीं हूंगी। आज टेबल के इस तरफ आप बैठे हुए और वो दूसरी तरफ है, कल हो सकता है इस कुर्सी पे वो बैठा हो और आप दूसरी तरफ बैठे, फिर क्या होगा। तो मुसलमानों को कहा गया नहीं, उन्होंने अगर गलत किया है तो गलत का जवाब गलत नहीं है, टिट फॉर टैट नहीं है, तुमने नहीं ऐसे करना। सुभान अल्लाह, और कितनी जबरदस्त तालीम है। अल्लाह अकबर। और जिंदगी के हर मैदान में इस बात से आप सीख सकते हैं। ये ना सोचें कि उनको कोई तकलीफ नहीं हुई थी, यहाँ तो वो कोई फरिश्ते ही थे उतरे हुए। जाहिर है दिल के अंदर कितना होता है, हमें जो कोई रोक दे, हम आराम पहन के चल पड़े और हमें कोई रोक दे तो हमें कितना गुस्सा आएगा, कितना गुस्सा आएगा। और कहाँ ये के उनके साथ तो क्या क्या उन्होंने हालतें की, कैसे कैसे नहीं दुश्मनी की। और फिर एक यूनिवर्सल रूल दे दिया गया, यूनिवर्सल, सुन रहे हो ना ईमान वालों, आपके लिए है ये सारी बातें, कोई टिम और जैक और हेनरी के लिए नहीं है, ईमान वालों आपके लिए है। यूनिवर्सल रूल फॉर ऑल टाइम्स, फॉर ऑल जेनरेशंस, एक कायदे को याद रखना, और वो क्या है, वताआवनु अलल बिर्री वत्तक्वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उदवान। ये तो बात अगर आप चाहें तो अपनी कहीं सामने लिख के लगा लें हमेशा के लिए, ये जिंदगी का असूल बनाना है हमने, हमेशा ताउन किस में करना है, ताउन, ताउन क्या होता है, सपोर्ट, हेल्प, कॉपरेशन। देखिए दुनिया में जो भी काम होते हैं ना वो एक दूसरे के ताउन से ही होते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक खाना ही आपने खाना है तो किसी का ताउन आपको चाहिए, कोई होगा जो उसको उगाएगा, कोई काटेगा, कोई बाजार में लाएगा, कोई बेचेगा, कोई पकाएगा, तो फिर जाके कोई किसी को रोटी मिलेगी। एक अकेला इंसान कहीं पे भी सब चीज नहीं कर सकता, उसको ताउन चाहिए होता है। कोई अपना बिजनेस करता है, अपनी दुकान चलाता है, कोई कोई काम करता है, उसमें भी उसको कोई वर्कर चाहिए होते हैं, कुछ कहीं से खरीद के लाएगा, कहीं जाके बेचेगा। तो इस तरह के कॉपरेशन से दुनिया चलती है ना, तो जब भी कॉपरेशन करनी है तो हमेशा बिर और तकवा में करनी है, इथ्म और उदवान में नहीं करनी। इथ्म गुनाह को कहते हैं, यानी जो अल्लाह के हकूक के अंदर इंसान कमी करता है, और उदवान है जो ज्यादती लोगों के साथ होती है। कोई भी ऐसे काम कर रहे हो तो उनके अंदर अपना हिस्सा नहीं डालना, उसको सपोर्ट नहीं करना। सपोर्ट किस तरह की सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट तो चलो शायद ना लोग इतना करते हो, लेकिन जब आप वर्बली किसी को सपोर्ट करते हैं या आप किसी को किसी की चीज के अंदर जिसको कहते हैं ना इन्वॉल्व होके उसको सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देती हूँ, मिसाल के तौर पे कोई एक बिदत कर रहा है और वो अपनी बिदत के अंदर लोगों को बुलाना चाहता है, अब ऐसे में अगर लोग ताबुन करेंगे तो ही उसका काम चलेगा ना, अगर वो ताबुन ही ना करें तो उसके घर पे कौन आएगा और वो किसके साथ ये काम को रिवाज देगा, अकेले तो किसी से भी नहीं कोई काम होता। अब ऐसे में लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं चले जाते हैं, फिर वो ऐसे ना हो कि बुरा मान जाए तो इसलिए चलो। तो आपने किस में ताबुन किया, गलत काम में ताबुन किया ना उसका। इसी तरह लोग आपको किसी ऐसी मजलिस के लिए बुलाते हैं, कोई ऐसी मेहंदियां हैं, कोई ऐसी शादियां हैं जहां पे फोहश चीजें हैं, गलत काम होने हैं, और आपको पता है कि ये इन्होंने क्या करना है और इनके क्या तरीके हैं, और पहले भी आप इनकी शादी भी गए थे, इन्होंने यही किया, तो आप क्या करेंगे, ताउन करेंगे इसमें। आपको पता है अगर हर कोई ताउन करना बंद कर देना गुनाह पे, तो फिर गुनाह खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा उस सोसाइटी से। लेकिन अगर लोग ताउन करते रहेंगे गुनाहों में तो फिर क्या होगा, वो काम पनपेगा और ज्यादा उसके यानी मिच्योर होगा और ग्रो करेगा। तो हमने भी तो अपना हिस्सा डाल दिया ना, जिस वक्त हमने ताउन किया तो हमने अपना एक शेयर जरूर उसमें डाला है, चाहे थोड़ा सा है। ठीक है, आप इसी तरह देखें किसी के चोरी के अंदर, किसी के हराम कमाइयों के अंदर उसके साथ कोई ताउन कर रहे हैं तो ताउन करने से ज्यादा बढ़ेगी ना चीज। इसलिए हमें अपनी जिंदगी का असूल बनाना है, हमने नहीं ताउन करना बुराई में। अब लोग कहते हैं नहीं जी मेरे दोस्त नाराज हो जाएगी, नहीं फिर वो फलाने का ही हो गया, जब आपने एक असूल बना लिया मैंने गुनाह के अंदर ताउन करना ही नहीं है, ये बढ़ावे चढ़ावे का सबब बनेगा ना उसका। हमने प्रमोट करना है तो नेकी को करना है, अच्छी चीजों को करना है, खैर की बातों को करना है, उसमें ताउन जितना मर्जी करें। आगे बढ़ के कामों में हिस्सा लें, उसको मॉरल सपोर्ट दे दें, उसको वैसे आप किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है तो उसमें हिस्सा डाल दें, मगर नेकी में, तकवा में, अल्लाह की फरमाबरदारी के कामों में। तो इससे हमें यहाँ पे एक सोसाइटी का पता चलता है कि सोसाइटी की उठान कैसी होनी चाहिए, सोसाइटी में लोगों को किस किस्म के ट्रेंड्स रखने चाहिए, कि नेकी के वक्त किसी को ये होगा कि मुझे 10 लोग मिल जाएंगे जो मेरे साथ ताउन करने वाले होंगे, गुनाह में कोई डरेगा फिर कि देखो मैं अगर ये काम करूंगी ना किसी ने भी नहीं मेरा साथ देना, सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे, तो वो जुर्रत करेगा फिर गुनाह करने की, गलत काम करने की, गलत स्टेप उठाने की। लेकिन जिस वक्त हम ताउन करते हैं, हम अपने आप को पेश कर देते हैं कि नहीं जी हम आपके साथ हैं, आप फिक्र ना करें, मैं बढ़ बढ़ के उनके उन कामों के अंदर अपना हिस्सा डालती हूँ, तो उसके बाद क्या होगा, उसको तो और ज्यादा एक जुर्रत मिलेगी, खुल के वो गुनाह का काम करेगा। क्योंकि जब इंसान अकेला होता है, वो कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, ये क्यों बोला जाता है, यानी एक के साथ जब एक मिल जाता है ना तो वो एक नहीं रहता, वो 2 नहीं बनते, वो 11 हो जाते हैं, यानी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जब आप ताउन करने लगते हैं गुनाहों के अंदर, तो लोग और ज्यादा जुर्रत करने लगते हैं उन गुनाहों में, वो बेशर्म हो जाते हैं फिर, उनको कोई हया नहीं रहती ना उनको कोई अपनी इसलाह का सोच रहती। लेकिन हमारे आज नॉर्म्स क्या है, हमारे प्रिंसिपल क्या है जिंदगी का, हम वहां ताउन करते हैं जहां पे हमारा मफाद है, हमें कुछ मिलना है, यहाँ पर कोई बड़े बड़े लोग हैं, अब अगर हम इनके साथ ताउन करेंगे ना तो कल को फिर हमें भी कुछ इनके साथ बैठने का मौका मिल जाएगा, या हमें इनकी नजरों के अंदर हम ऊंचे हो जाएंगे, इनकी नजरों में हम इनके ज्यादा करीब हो जाएंगे, तो वो जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, एलीट लोग हैं, वो चाहे उल्टे सीधे ही कोई काम कर रहे हो, हमने जरूर अंदर बीच में घुस के करना है, इसलिए सिर्फ करना है ताकि उनकी नजरों में हमारी वैल्यू बन जाए। हमें ये नहीं शर्म आती कि अल्लाह की नजर में हमारी क्या वैल्यू होगी, हम बढ़ बढ़ के फिर उनके काम करते हैं। ये असूल तो ये सारी चीजों को कट करने वाला है जो हमने आज प्रिंसिपल्स बनाए हैं। इसी तरह जब हम ताउन करते, जब हम सपोर्ट करते हैं, मसलन कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या हमारी बरादरियां हैं, हमारे कबीले हैं, हमारे अपने लोग हैं, तो तब भी ताउन बिर और तकवा में ही करें, उनके साथ गुनाहों में ना करने शुरू कर दें, कि चूंकि ये हमारी पार्टी का है या चूंकि ये हमारी बरादरी का है, अब चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, हमारे सामने है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन हमने उसको सपोर्ट करना ही करना है जी, क्योंकि ये हमारा है, अपना बंदा है, कहते हैं ये हमारा अपना बंदा है, हम तो इसको नहीं सपोर्ट करेंगे तो क्या। और इसमें याद रखिए, काफिर और मुसलमान के भी कोई फर्क नहीं है, काफिर भी अगर कोई नेकी का काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे कोई अस्पताल बना रहे हैं, मिसाल के तौर पे और कोई ऐसे नेकी के काम कर रहे हैं, उसमें आप ताउन कीजिए, जरूर कीजिए, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर, मगर गुनाह का काम चाहे आपका अपना सक्का भाई कर रहा हो ना, उसमें ताउन ना करें। और हमें ऐसे मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताउन किया था उस वक्त, जिस वक्त के काफरों को भी जरूरत थी, तो आपने उनका ताउन किया, इसलिए कि नेकी का काम था, तकवा का काम था। जब भूख और प्यास उनके ऊपर थी, फाका उनके ऊपर था, तो ताउन किया था आपने, तो इसमें हरज नहीं है जिस वक्त नेकी के काम हो। लेकिन आपको ये नहीं समझ आती कि हम समझते ना तो क्या हो गया, तो क्या हुआ, आपको ये नहीं पता चलता कि देखो जब मैं बुराई के अंदर अपना ताउन डालूंगी तो मैंने अपना वेट डाल दिया, समझ लें उस पलड़े के अंदर मैंने उसको हैवी कर दिया, मेरा भी चाहे थोड़ा सा ही वेट क्यों ना हो, है तो सही, मैं भी एक बंदी हूं, मैं क्यों डालूं अपना वेट, मैं क्यों अपना हेड काउंट दूं यहां पर, कभी सोचते हैं इसको, हर कोई अगर बंदा ये सोचने लगे मेरे से क्या फर्क पड़ेगा, चलो मैं तो कर लेती, मैं तो इनके साथ हो जाती हूँ खड़ी आज, तो आपको ये नहीं समझ आती कि हर बंदा ये सोच के आ रहा है तो हेड काउंट कितना हो गया, वो एक ने भी वही सोचा, 2 ने भी, 4 ने भी, 10 20 बंदे तो उसने अपने साथ मिला ही लिए ना फिर, क्योंकि आप सब यही सोच रहे थे। तो ये इतनी वसी आयत है ना, ये इतनी वसी ये पोर्शन है आयत का, कि ये आपके हर फेज ऑफ लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ है, आपके ताल्लुकात हैं, आपके कारोबार हैं, आपके किसी साथ मिलना जुलना है, बस हर जगह पे ये बात अप्लाई होती है कि मैंने अपना रूल बनाना है। तावन वाल बिरी व तकवा वाला तावन वाल इसमें वाला तुम्हारा, नहीं जी मैं नहीं, आपकी माजरत है मेरी तरफ से, इसमें मैं नहीं हिस्सा ले सकती, बाकी आप कोई काम बताएं तो जरूर मैं हाजिर हूं, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती क्योंकि ये गुनाह का काम है। ये बोलते हुए हमारी जबान ही बंद हो जाती, गिगी बंद जाती है कि हाय कैसे कहूं, नहीं ना बुरा मान लेगी, हमारे ताल्लुकात ना खराब हो जाए। अल्लाह से ताल्लुक खराब होता रहे तो होता रहे, अल्लाह ताला ने तो अपने कुरान में ये फरमाया। हमारे तावुन आज किधर हो रहे हैं? अगर हमारे तावुन हो रहे होते ना नेकी में, तो आज ये हाल ना होता जो दुनिया में देख रहे हैं हम। हमारे तावुन है ही बुराई में, हम उधर जा जा के बैठते हैं, उन्हीं चीजों को हम सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट की निगाह से देखते हैं, तारीफ करते हैं उन चीजों के ऊपर जो गुनाह की होती हैं, तो वो भी एक तावुन ही है। गुनाह उसने किया, आपने ठीक है नहीं किया, आपने अपना तावुन तो डाल दिया ना, आपने जो दो डायलॉग बोले उसके जरिए आपने अपनी सपोर्ट दे दी उसको कि वो और ये काम करे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये बहुत, इसके ऊपर तो पूरा एक दर्स हो सकता है, ये तो पूरा एक लेक्चर है इसके ऊपर कि आप ये बात समझें कि कैसे तावुन होता है बिर और तकवा में, और कैसे नहीं तावुन करना हमें गुनाहों और ज्यादती के कामों में, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। और जब आप नेकी में तावुन करेंगे ना, फिर देखिएगा नेकी कैसे आगे बढ़ती है, इरिस्पेक्टिव वो कोई भी कर रहा है, वो आपके ओपोनेंट्स हैं, वो आपके कोई दुश्मन है, तो फिर भी कह देंगे ठीक है मुझे इनके ये बातें नहीं पसंद, मगर ये चीज वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये होता है ना फिर हक बात कहना, ये नहीं है कि बस किसी से दुश्मनी है तो उसका सीधा भी हब उल्टा नजर आता है, नहीं उसमें कहें कि ये वाली चीज है इसमें मैं जरूर आपके साथ खड़ी हूं, ये काम जो फलां कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे हमारे उनके साथ कितने भी इख्तलाफ आते हों, लेकिन ये उनके चीज ठीक है। लेकिन आज आप देखें, और आप ये पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, आप किसी को भी देख लें, कहीं पे भी आप उठा के देखें, हर कोई कहता है नहीं जो हमारा है ना बस वो ठीक है, और दूसरा जो है वो सारा ही गलत है। ये तो तरीका कार अल्लाह ने कुरान में भी नहीं किया, जहां पे यहूद की भी सिफत थी वहां पे उनकी सिफत बयान की है। हम कहते हैं मेरा बच्चा है ना तो इसकी हर चीज ही खूबी है, वो थूकता भी है तो वो भी एक सोने की चीज है क्योंकि वो मेरा बच्चा है, तो ये बात सही नहीं। तावन वाल बिर व तकवा वला तावन वाल इस्मी वाल उदवान, मेरे बच्चे भी अगर गलती कर रहे हैं तो मैंने उसमें तावुन नहीं करना, ये नहीं कि वो मेरे बच्चे हैं इसलिए तावुन ही, मैं माँ हूं मैं और क्या करूं, नहीं, कहेंगे कोई ये गुनाह का काम है, ये अल्लाह की नाफरमानी है। जहां कोई दूसरे के साथ ज्यादती कर रहा है, आप देखती हैं आपकी दोस्त जो है वो अपने हस्बैंड के हकूक नहीं अदा कर रही है, गलत कर रही है, अपने ससुराल में गलतियां कर रही है, बिगाड़ डाल रही है, उसको वहां पे कहें रोकें उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम है या मजलूम, तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ठीक है जालिम के तो मजलूम की तो समझ आती है कि हम उसकी मदद करें, फरमाया मदद करो उसकी, तो जालिम की हम कैसे मदद करें, फरमाया उसको रोक के, उसकी ये भी उसकी मदद है कि आपने उसको रोका, ये आपने तावुन किया नेकी की तरफ और बुराई को रोकने में तावुन किया, समझ आई बात। तो एक नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है बड़ी आंखें खोल देने वाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी जालिम के साथ उसकी मदद करने के लिए चला वो इस्लाम से निकल गया, यानी आप जालिमों के साथ खड़े हो जाएं और उनकी मदद करने खड़े हो जाएं कि जो है ना हम इनके साथ हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं, ये ऐसा है कि वो इस्लाम से निकल गया। आज जालिमों के साथ लोग इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जालिम अगर अमीर है तो वी डोंट केयर वो जालिम है, जालिम अगर पावरफुल है, उसकी कुर्सी है, उसकी से है लोगों में, उसके पास कोई बड़े ओहदे हैं, तो जालिम है या जो मर्जी है हमारी बला से जुल्म करता हो जी अपने घर में, हाँ हमें इससे क्या भाई, हम नींद में पड़ते चीजों में, वहां पे हम ये इस पे आ जाते, हर चीज को एक साइड पे डाल देते, हमें पता है कि ये गलत कर रहा है, ये इतना जुल्म कर रहा है, हमें चाहिए कि हम उससे डिस्कनेक्ट करें अपने आप को, हम उसके साथ ही खड़े हो जाते हैं, या हम उसको रोकें, अगर रोक नहीं सकते तो उससे अलग हो जाएं, हम उसके साथ चलते हैं। کہ ہم نے اس کی نظروں میں اپنے نمبر جو بنانے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آواز دی جائے گی کہاں ہے ظالم لوگ اور ان کے مددگار, یہاں تک کہ وہ لوگ جنہوں نے ظالموں کے دوات قلم کو درست کیا وہ بھی سب ایک لوہے کے تابوت میں جمع کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. یعنی اتنی سی بھی سپورٹ, کتنی سپورٹ ہوتی ہے یہ ایک قلم دوات کو سیدھا کرنا, کتنی سپورٹ ہوگی, کیا سپورٹ کر لی ہوگی اس نے, اتنا سا بھی اس کو ہیلپ دینا, اتنی سی بھی اس کو سپورٹ کرنا, اتنی سی بھی اس کے کام کے اندر اس کے ساتھ تعاون کرنا کہ اس کی قلم دوات کو بھی سیدھا کیا نا, جبکہ اس کو پتا تھا یہ ظالم, تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا. اللہ اکبر. تو جرائم میں, غلط کاموں میں, لوگوں کی بدعمالیوں میں ان کے ساتھی نہ بنے. ہم گھروں میں آ کے بہت پرچار کرتے اور ویسے اس نے بڑا غلط کیا, اور پہنچے ہم بھی وہیں پہ ہوتے, اس کے سامنے کھلکھلا کے ہنس رہے ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں اور تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, گھر آ کے کہتے ہیں ویسے بڑا غلط کیا انہوں نے. تو اگر غلط کیا تو یہ اور بھی بڑی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ سینس دی تھی کہ یہ غلط ہے, لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ شامل ہوگا اور اس کے ساتھ بیٹھے صرف کس لیے, بات وہی بات پھر آ گئی نا, اپنے نمبر بنانے کے لیے. یہ بھی ظالم کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا, یہ اپنے نمبر بن جائے, مجھے اس سے کچھ مل جائے. حالانکہ بعض دفعہ کوئی آپ کو کچھ دے نہیں رہا ہوتا, وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی نظروں میں جج ہیں, ان کے ساتھ ہمارے کانٹیکٹس رہیں, کیونکہ یہ پاور میں جو ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ بدعمال ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط کام کرتے ہیں ہم, لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور وہ اس وجہ سے اور اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ظلم کو نہیں چھوڑتے, غلط کاموں کو نہیں چھوڑتے, کیونکہ ان کو تعاون جو مل رہا. سوچیں جا ایک سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کو اگر سب لوگ ان سے منہ موڑ لیں, سب لوگ کہیں کہ نہیں ہم نہیں ہیں آپ کے ساتھ ہیں, کون کر سکے گا غلط کام, کون کر سکے گا پھر. ایک مثال کے طور پہ ایک لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہیز لینا, سب اس کے اوپر تھو تھو اگر کریں. آپ نے پچھلی دفعہ, میں نے آپ کو وہ بات بھی حدیث بھی بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آدمی آیا, اس نے اپنے ہمسائے کی شکایت کی, آپ نے فرمایا تم اپنا سامان باہر رکھ دو, لوگ آتے تھے ہمسائے پہ تھو تھو کرتے تھے, اس نے آ کے ہاتھ جوڑے معافیاں مانگی, جی آپ چلو اپنے گھر میں, لوگ میرے اوپر لانتے ملامتے کرنے لگے ہوئے, چلو آپ اپنے گھر میں, آئندہ نہیں آپ کو کبھی ستاؤں گا. تو جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ تو میرا ساتھ چھوڑ دیں گے, تو پھر وہ سب ڈرتے ہیں, چاہے وہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ آدمی ہو, وہ بھی کہتا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ ساتھ رہیں. جب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے سے ساتھ چھوڑ جائیں گے تو وہ پھر گھبرا جاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اچھا نہیں ہم نے یہ کام کرنا. ہم ہمیشہ لوگوں کی نظروں کو دیکھتے ہیں, تو ہر ایک اسی طرح دیکھتا ہے, تو مت تعاون کریں, کم از کم ایک سپورٹ تو کم ملے گی نا اس کو, کوئی ایک تو کہنے والا ہوگا. ہم تو یہ کہتے بھی نہیں ہیں کہ جی یہ غلط کام ہے, یہ بدعت ہے, یہ گناہ ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ کہنے سے بھی شرماتے ہیں اور الٹا ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جو انسان دوسروں کی ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے تو جتنے آدمی اس کی دعوت پہ نیک عمل کریں گے اس سب کا اجر اس کو مل جائے گا, اور جس نے لوگوں کو کسی گمراہی میں یا گناہ میں اس کے شامل ہوا اور اس طرح بلایا, تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے گناہ میں مبتلا ہوں ان سب کے گناہوں کا برابر اس کو بھی گناہ ملے گا, اس طرح نہیں ہے کہ اس کو کم مل رہا ہے. تو اب ہم جتنے لوگوں تک پروموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو, ان گناہوں کی پروموشن ہوتی ہے, آگے تک جاتے ہیں, آپ چاہے ان کو وربلی نہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور یہ گناہ کرو, لیکن جب ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے سوسائٹی میں اور لوگ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس کے اندر, وہ آگے سے آگے وہ چیزیں پھیلتی ہیں, تو سارے گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ کرنے والا تو ہوتا ہی ہے, باقی بھی سارے شامل ہیں. اسی طرح ایسی جگہوں کے کاروباروں میں جو, اب مثال ایک دیتی ہوں, یہ تو ایک مثال ہے نا, آپ باقی جگہوں پہ بھی دیکھ لیں. ایسا مثلاً ہے کسی کا فلموں کا کوئی کاروبار ہے, کسی کا ایسی چیزیں بیچنے کا کوئی کاروبار ہے جو غلط ہے. اب آپ جا کے وہاں سے فلمیں لے رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں, اس کے کاروبار کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, ہو رہا ہے نا اس کا کاروبار سپورٹ. اگر نہیں لیتے آپ تو آپ کہتے ہیں لو میرے ایک لینے سے کیا فرق پڑتا ہے, نہیں فرق پڑتا ہے, آپ بھی ایک انڈیویجول ہیں. اسی طرح سارے ہی سوچنے لگے میرے سے کیا فرق پڑتا ہے تو پھر تو इसीलिए तो फिर चीजें बंद नहीं होती। हमारे यहाँ कितना ये फिल्मों का, ये इन सीडीज गाने और पता नहीं क्या क्या चीजों का कारोबार है। अगर लोग कहने लगे हमने नहीं इसमें तावुन करना, कैसे चलेगा उनका कारोबार? खुद ही वो दुकान बंद करके कुछ और शुरू करेंगे। लेकिन ये आम आवाम के तावुन होते हैं जिसकी वजह से गुनाह बढ़ते हैं सोसाइटी में। और नेकी में तावुन होता है तो तब नेकी बढ़ेगी। तो ये वो चिड़िया की चोंच वाला बात है ना, कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो चिड़िया ने अपनी चोंच में लाके पानी डाला। अब वो किस में तावुन कर रही थी? आग को बुझाने में। उसके एक कतरे से क्या हो जाना था? किसी ने कहा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे कोई आग बुझेगी? तो कहने लगी मेरी तो चोंच इतनी ही है ना, जितना मेरी चोंच में आता है मैं तो उतना ही डालूंगी। उसने अपना काम कर दिया तो आप अपना काम कीजिए। इसी तरह वो बात है कि जो गो है इसने फूंके मारी आग में कि आग और बढ़े, उसके फूंके मारने से तो नहीं बढ़ जानी थी, लेकिन उसको हमेशा के लिए उसको ऐसा जानवर कर दिया कि इसको मारो। तो अपना तावुन देखिए कि किस तरफ मैं अपना वेट डाल रही हूं जिंदगी में, किन कामों में डालती हूं, और असूल बना लीजिए इसको जिंदगी का कि नहीं अब चाहे अब मेरे सके ही क्यों ना हो, इसम और उदवान में मैंने नहीं डालना अपना तावुन। ठीक है, वत्तकुल्लाह। और हर बात के बाद यही बात है असल में कि अल्लाह से डर जाओ, यानी अल्लाह की नाराजगी से बचने वाली और अल्लाह की रजा वाली जिंदगी इख्तियार करो। ये जिंदगी है एक तकवा वाली। तकवा एक पूरी लाइफ का नाम है, तकवा वाली लाइफ। तो जब तुम ये करोगे ना तो फिर ही तकवा वाली लाइफ होगी। तो वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से। हम डरते किस बात से हैं? वो ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए। इन अल्लाह शदीदुल इकाब, ये अहकामात ऐसी हैं इनको मामूली ना समझना। अल्लाह ताला बड़ा सख्त है फिर सजा देने वाला भी, कि यानी अगर नहीं मानोगे ना तो याद रखना फिर अल्लाह के पास सजाएं भी हैं। बात समझ आ गई ना? क्योंकि जब किसी चीज का हुक्म दिया जाता है ये आपने नहीं करना और फिर भी कोई कर रहा हो, तो उसके बाद प्यार तो नहीं मिलता उसको, फिर तो सजा का ही इसको डरावा दिया जाता है कि ये याद रखना फिर सजा भी है अगर नहीं करोगे तो। यहाँ पे गफूर रहीम नहीं आया। ये आपने नोट किया? इसलिए क्योंकि जो भी बात आती है ना एंडिंग में, वो भी उसके मुताबिक होती है जो बात आयत में कही जा रही है। यहाँ पे वो हलाल और हराम की बातें कही जा रही हैं जिनमें बाज में हो सकता है इंसान कहे कि नहीं जी ये तो नहीं मैं कर सकती, ये तो नहीं मैं मान सकती। तो फिर याद रखना अल्लाह से डर जाओ, वो सजा देने में भी बड़ा सख्त है फिर, और उसने पकड़ लिया तो फिर बच नहीं सकोगे।